سن 4 ہجری کے واقعات۔ ابو سفیان احد سے پھرتے وقت کہہ گئے تھے، یعنی واپس ہوتے وقت کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ پھر بدر پر لڑائی ہوگی، کیونکہ بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہہ گئے تھے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ احد میں بظاہر ان کو بھی کیا تھا، تو پھر اگلے سال جو ہے ہمت نہ ہوئی بدر واپس آنے کی۔ ابو صورت ہو کہ آپ بھی بدر نہ جائیں، کہ نعیم ابن مسعود نام تھا، مدینہ بھیجا کہ مسلمانوں کو ابو سفیان کے بہت لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر مرعوب کرے۔ بس ویسی جا کے بولو کہ بہت بڑا لشکر لے کے ابو سفیان رہا، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا بدر نہ جائیں ڈر کے۔ مسلمانوں نے سن کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پاک بہترین وکیل ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، ہم برابر آئیں گے، کتنا بھی لشکر جمع کرو۔ اور آپ 1500 آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز مقام کیا، یعنی وہاں پہ قیام کیا، کوئی مقابل نہ آیا، اور وہاں صحابہ نے تجارت بھی کی۔ پھر اس جگہ پہ بدر شہر بھی ہے، اور خوب نفع حاصل کیا، اور خوش و خرم بغیر جنگ اور رنج کے واپس آئے۔ اس غزوے کو بدر ثانی اور بدر صغرا اور بدر موعد بھی کہتے ہیں، وعدے کے اعتبار سے گئے تھے حضور، لیکن دشمن آیا نہیں وہاں پہ ڈر کے مارے، اور زیادہ شرمندگی ہو گئی جس خجالت کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے تھے مشرکین مکہ، وہ خجالت اور بڑھ گئی۔ پتہ چل گیا کہ وہ مروب کرنے کی کوشش میں مروب ہو گئے۔ یہ واقعہ شعبان میں اور بقول بعض قعدہ میں ہوا، اور اسی سال امام حسین پیدا ہوئے، سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عمر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں بہت تھوڑی تھی، بعض 5 سال لکھتے ہیں، بعض 5 سال کچھ مہینے لکھتے ہیں، اس میں بھی ان سے کچھ حدیثیں منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی۔ صدقے کی روایت ان سے منقول ہے نا، کہ میں صدقے کا کھجور ایک مرتبہ منہ میں ڈال لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے اس کو نکال دیا تھا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے بول کے۔ سن 5 ہجری، اس میں غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول میں ہوا۔ یہ مقام دمشق سے 5 منزل پر ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جا کر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ جنگ اپنی زمین پہ نہ ہو، چونکہ اپنی زمین پہ جنگ ہوگی تو ہم چاہے کامیاب ہوں یا ناکام، وہ تو بات کی ہے، نقصان تو اپنا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کہ جیسے آپ کو پتہ چلتا کہ دشمن تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جاتے تھے، اگر لڑنا ہی ہے تو وہاں لڑائی ہو یا نہ ہو۔ آپ نے سنا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں اور مدینے پر چڑھنا چاہتے ہیں، آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ لوگ خبر سن کر متفرق ہو گئے، بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں مقیم رہ کر مدینہ تشریف لے آئے، چونکہ جس میں آپ خود تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ بے شمار غزوات میں آپ تشریف لے، مطلب بہت سے غزوات میں آپ لے گئے، تقریباً بعض حضرات 27 بتاتے ہیں، بعض 40 بچوں کے قریب سری ہوئے، 150 جنگ یا لشکر آپ نے بھیجے، خود آپ اتنے میں گئے، جنگیں ہوئیں، ہر سال جنگیں کئی کئی ہوتی رہیں۔ مگر عجیب بات کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کچھ ایسی ہوتی تھی کہ نہ اپنے مرے نہ ان کے مرے، یہ آپ کی حکمت عملی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عرصے میں فتح مکہ کو ملا کر اپنے اور پرائے ملا کے 1100 سے زیادہ آدمی نہیں مرے ہیں۔ ایسی عجیب حکمت عملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنگوں کا نبی، تم کہتے ہو کہ لڑائی کا نبی، تم کہتے ہو کہ تلوار سے اسلام پھیلا، تم تو اس سے زیادہ روزانہ سڑکوں پہ سے اٹھاتے ہو گاڑیوں کے نیچے سے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ تم روزانہ سڑکوں پہ گاڑیوں کے نیچے سے جن کو اٹھاتے ہو उससे इससे ज्यादा हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे अरसे तबलीग में जो यहाँ पे आपका गुजरा अपने और पराये मिला के जो है ना मरे हैं। स्ट्रेटेजी आपकी ये होती थी कि आपने जो है आप आजिज कर देते थे और रौब डाल देते थे। खुद फतेह मक्का के मौके पर, चूंकि फतेह मक्का पे 10,000 का लश्कर गया था एकदम सावा का, पे आते तो बहुत मसला, बहुत मरते, बेशुमार मरते, चूंकि सावा तो वैसे ही भरे हुए थे और बहादुर तो थे ही थे, फिर ईमान की क़ुव्वत, फिर ताकत भी आ गई थी, बहुत कुछ, सब कुछ हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मक्के वाले लड़े नहीं, हालांकि ऐसे वक्त जब ताकतवर होता आदमी तो चाहता है वो लड़े तो फिर हम उनको बताएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो लड़े नहीं, तो आपने ये किया था कि जितने आदमी हैं सब अपना अपना चूल्हा जला के पका के खाओ। तो जासूस जो होते थे वो चूल्हों को गिनते थे लश्कर के, तो 10,000 चूल्हे जले। तो जासूसों ने जाके इत्तला दे दी कि वो तो एक आदमी, अगर 10 आदमी मिलके एक चूल्हा जलाए, 10,000 चूल्हे जल गए तो कितने हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। दूर से गिनते जाते थे, माहिर होते थे। उन्होंने कहा कि नाकाबिले मुकाबिला लश्कर है, ये मतलब मुकाबला नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा लश्कर है हुजूर के साथ। तो सब छुप गए, सरेंडर हो गए, सब छुप गए। आप मक्के में दाखिल हुए, आपने दाखिल होते अमान का ऐलान कर दिया कि माफ़ अंतमुतलाका, आज मैं वही ऐलान करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए किया था, जाओ तुम सब माफ़, तुम सब माफ़, सबको माफ़ी ऐलान दे दी। तो किसी को मारने की नौबत नहीं, फतेह मक्का में मारे नहीं किसी को, दो या तीन औरतें थी, बकिया मर्द थे जो जिनके ऊपर बहुत से भारी वो थे, कत्ल किए हुए, ये वो मर्डर के केसेस फलाना तौर पर किए हुए, और इस्लाम की हिजो करने वाले, बुराई करने वाले, इस्लाम की मजम्मत करने वाले और काफिरों को लड़ाने के लिए उभारने वाली एक दो खवातीन बहुत ज़्यादा थी, अशार पढ़ पढ़ के गा के। तो वैसे 17 लोगों को मारने का आपने हुक्म दिया था, बकिया सब को माफ़ कर दिया, हत्ता कि काफिरों के घर में जो अमान ले ले, अबू सुफियान के घर में जो अमान ले ले वो माफ़, जो जो आदमी 21 साल से लड़ रहा था उसको भी ये कहा कि इसके घर में भी कोई अमान लेगा तो वो भी माफ़ है। तो इस तरीके से आपने पूरे अपने तवील अरसे उसमें 23 साल मुद्दत में, यहाँ मक्के में तो ऐलानी इजाज़त ही नहीं थी बदला लेने की, हाथ उठाने की, वहाँ जाने के बाद में भी जो है नौबत इतनी ज़्यादा, इतनी कम आपने इख्तियार फरमाई कि जान ज़ाय नहीं करते थे। उधर उलमा ने फरमाया कि ये हुजूर, ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी बात कि हम जिनको मारेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। मुसलमान जब किसी काफिर को मारता है तो वो जहन्नम में जाता है, तो जहन्नम में पहुंचाना कौन सा वो है, अच्छी बात है। तो लड़ना पड़ जाए ना गुजीर तो लड़ना भी है, चूंकि अब काफिर लड़ने के लिए आएगा अल्लाह के लिए तो लड़ना भी पड़ेगा ही, उसमें जा रहा है अपनी अपनी मर्जी से जहन्नम में जा रहा है तो उसका क्या इलाज है। लेकिन ये कि हत्तल इम्कान आप ये कोशिश करते थे कि हमारी वजह से ना जाए। खैर ये बात इस पर याद आई कि जैसे आपको ये मालूम हुआ कि दमिश्क के पास जो है ना दौमतुल जंदल में लोग जमा हो रहे हैं तो आप खुद ही पहुंच गए, मगर आपके पहुंचने को इत्तला की पहुंचने की इत्तला मिलते ही एक तो उतनी दूर आ गए बोल के मालूम हो गया तो आदमी की हिम्मत वैसे ही चली जाती ना, तो वो लोग मरूब भी हो गए कि भाई वो खुद हमारे पास आ रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस है उनको और कितने ताकतवर होंगे, जब भी तो आ रहे हैं वो हमारे पास तो भाग गए। इसी साल शाबान में गजवा मुरैसी भी हुआ, इसको गजवा बनी मुस्तलक भी कहते हैं। आपको ये खबर पहुंची कि बनी मुस्तलक लड़ाई का इरादा रखते हैं, आप खुद सहाबा को लेकर रवाना हुए और वो लोग मुकाबिल न हुए, वो लोग भी लड़ने को नहीं आए, करते थे लड़ने को तो लोग आते थे लेकिन आप चूंकि बहादुर और जरी थे तो जब कोई आरा बोल के मालूम होता तो आप खुद ही चले आते थे, ऐसा होता था। उनकी अमवाल और जुर्रियत मुसलमानों के हाथ लगे। हजरत जुवेरिया इसी गजवे में साबित बिन कैस के हिस्से में लगी, उन्होंने मुखातब बना दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले किताबत अदा करके उनसे निकाह फरमाया। और इसी गजवे में किस्से इफ्क यानी हज़रत आयशा से मत लगाने का दर्दनाक वाकया हुआ। ये रास्ते में क़याम फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अंधेरे में आप जो है ना इस्तिंजा के लिए चली गई वहाँ पे, क्योंकि अंधेरे में जा सकती थी, जाना चाहिए था तो उसमें दूर चली गई थी, वहां पे उनका कोई हार गिर गया। वापस आई, आने के बाद में उन्होंने देखा फजर की नमाज के बाद, तो फजर के बाद हुजूर साहब ने सफर का इरादा फरमा लिया कि कुछ का हुक्म फरमाया, और साहबे करम जो खिदमत पे मामूर थे वह हौदज जिसमें औरतें बैठा करती हैं ऊँट की सवारी के में, वह हौदज उठा के ऊँट पे रख दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला इतनी हल्की फुल्की थी कि जो उठाने वाले साहबी थे उनको पता नहीं चला कि अंदर कोई है क्या नहीं, चूंकि वो रही तो भी ज़्यादा वज़न नहीं, चार आदमी मिलके उठाते हैं, वैसे हल्की फुल्की थी, तो वो रहने ना रहने का पता चला ना नहीं रहने का पता चला, पर्दा था, कौन अंदर झांके देखता कि कौन है कौन नहीं, और झांके देखने की इजाज़त भी कहाँ से हो सकती थी, उठा के रख दिया उधर, काफिला चले गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला जंगल से वापस आई तो देखा था कोई है ही नहीं, तो सारे निकल गए। बहुत ज़्यादा समझदार थी आप, तो कहा कि जब मुझे नहीं पाएंगे तो यहीं आएंगे जहाँ से मुझे उठाया था, जहाँ पे हौदज रखा था, फिर वहीं वो लेट गई, आंख लग गई उनको। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आने को बोलते थे, पूरे काफिले का चक्कर लगा के जहाँ जहाँ पे ऊँट बैठे थे कि किसी का कोई सामान गिर गया हो तो ले आए। वहाँ देखा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला लेटी हुई थी, जैसे ही हज़रत आयशा को देखा सुभान अल्लाह का, तो इनकी आंख खुल गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को देखते, तो हज़रत आयशा को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि ये तो आयशा हैं, अम्मी जान हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उन्होंने पहचाना इसलिए मुझे कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि पर्दे का हुक्म चेहरे को शामिल था, तभी तो उन्होंने पर्दे के हुक्म ये बात फरमाई। अगर ये बात ना होती तो ये ना फरमाती कि उन्होंने पर्दे का हुक्म से पहले मुझे देखा था। तो जैसे उन्होंने सुभान अल्लाह कहा मेरी आँख खुल गई, फिर मैंने वाकया उनसे बताया कि ये किस्सा ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपने ऊँट पे मुझे बिठा दिया और वो आगे आगे पैदल चलते रहे, मुझे ऊँट पे बिठा के वैसे ले आके काफिले में शरीक हो गए। तो ये मुनाफिकिन को मौका मिल गया बात उड़ाने का, तो उस पर उन्होंने बहुत धींगा मुश्ती की, मतलब ये कि हंगामा किया, शोर किया, फितना मचाने की कोशिश की। किसी के काम को ख़राब करने का तरीका उसकी शख्सियत की किरदार कुशी करनी होती है, उससे जो है ना काम ख़राब होता है उसका जो काम है वो। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना पर था। अगर हुजूर की किरदार कुशी खुदा न खास्ता की जाती है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ज़ाहिर है कि इस्लाम को नुकसान पहुँचता, और किरदार कुशी के वास्ते जो है ना घर वालों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रास्ता था मुनाफिकीन का, इस रास्ते से उन्होंने बहुत कुछ कहना चाह करना चाह। तो मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा ही नहीं था, और फिर यह है कि कोई वही भी नहीं आ रही थी। 2 महीने गुजर गए इस पे, 2 महीने तक हुजूर परेशान रहे, और एक तकरीबन 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को घर भेज दिया था उनके अब्बा उनकी अम्मा के पास के, तो वहाँ चली जाओ, अल्लाह का कोई हुक्म आएगा तो फिर देखा जाएगा। आयशा तो जो परेशान हुई, जाहिर है उस ज़माने में उनका तो जीना मुश्किल हो गया था, इतनी कमज़ोर हो गई थी और कि उनके जीने की उम्मीद बाकी नहीं रही थी सदमे की वजह से। खैर फिर अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा एक रुकू नाजिल फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बरात में, और फिर तफसील है उसमें पूरे सूरह नूर के अंदर उसकी वाकई की पूरी तफसील मौजूद है। बहुत से मसाइल पर इस वाक़े से रोशनी पड़ती है, लेकिन उसमें से एक ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ मरतबा अल्लाह पाक बाज़ बातें नहीं बताते थे इंतज़ामी मसलहत की वजह से, अल्लाह ही जानता है। तो ऐसा गैब का इल्म जैसे अल्लाह का होता है वैसे हुजूर को नहीं था, अगर होता तो ये वाक़ इतना 2 महीने तक हुजूर को परेशान न करता। फिर ज़ाहरी तौर पर जो है ना जब तक कोई सबूत और जो कोई दलील ना हो कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता, फिर आप इंतज़ामी एतबार से आपने हज़रत आयशा को उनके घर भेजा। हज़रत आयशा बड़ी नाराज़ कि भाई जिस वक्त मेरे पे ये मुसीबत आई थी तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, बातों में लग गए सब बातों में सुनी सुनाई बातों में बाज़ वक़्त सीधे साधे लोग लग जाते हैं ना, शिकार पड़ी है वह गुस्सा किया अल्लाह ताला ने। ऐसी सूरत में ये फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि ऐसी सूरत में पहले इनकार है, आपको तहकीक हो या ना हो जब तक साबित ना हो जाए तहकीक से उस वक्त तक वो बात गलत होगी, लिहाजा उसकी तरदीद करनी होगी। अगर किसी के बारे में कोई बात सामने आए तो आप ये भी नहीं बोलेंगे कि हम तवक्कुफ़ करते हैं कि देखें तहकीक के बाद क्या होता है, ये नहीं, तहकीक होने तक तो वो गलती है, और तहकीक होने के बाद तो फिर गलत ही हो साबित हो ही जाता है। ये फिर ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने वाज फरमाया, नसीहत फरमाई, और ये फरमाया कि मैं बस एक खास मसलहत की वजह से छोड़ा जा रहा है, वरना जो लोग जो लोग इसमें शरीक हुए थे, लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम, अगर अल्लाह ताला की खास रहमत और फजल न होता तो जो तुमने किया उस पर तुमको सख्त अज़ाब मिलता, बड़ा अज़ाब मिलता। ये इतनी बड़ी तुमने गलती की और नबी को दुख पहुँचा दिया आपने, और जिन वाले उन पर उनको परेशानी में डाल दिया। मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े पर लिखा है कि गहे बर तारिक़े आला नशीनम गहे बर पुश्त पाए खुद नबीनम। बाज़ मरतबा अम्बिया के साथ में भी ऐसा होता है कि करीब से करीब चीज़ को दिखाया नहीं जाता, और जब दिखाना होता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ अर्श के ऊपर की चीज़ भी दिखा दी जाती है। ये गहे बर तारिक़े आला नशीनम गहे बर पुश्त पाए खुद नबीनम, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो कनान जो है ना मिस्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पता ही नहीं उनको, 27 साल गुजर गए इसी में रोते रोते 27 साल। और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा कि ये डालो उनके ऊपर, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो जब कुर्ता वहाँ से निकला मिस्र से, तो इन्होंने बता दिया कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। कहने लगे कहीं तो ऐसा है कि मिस्र से जो है ना कुर्ते की खुशबू सूंघ ली, और कहीं यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ बैठे हुए हैं 27 साल से, उसका पता नहीं है। इस पर यह शेर कहा है, गहे बर तारिक आला नशीनम गहे बर पुश्त पाए खुद नबीनम, पुश्त अपने पाँव के ऊपर की चीज़ भी नज़र नहीं आती, और बाद मरतबा यह है कि उस पर आला आसमानों की चीज़ भी, लोहे महफूज की चीज़ भी नज़र आ जाती है। तो अल्लाह ताला की हिकमत होती है अपने बंदों के साथ। गर्ज यह है कि यह वाकया जो है, ये वाकया इसी साल पेश आया है, ये बता रहे हैं सन 5 हिजरी में ग़ज़वे बनिल मुस्तलक के मौके पर, और इसी साल शव्वाल में ग़ज़वे खंदक, जिसका नाम ग़ज़वे अहज़ाब भी है, वाक़ हुआ। ग़ज़वे खंदक का मुख्तसर ज़िक्र कर रहे हैं, उसका क़िस्सा उसका यह है कि जब बनी नज़ीर जिला वतन किए गए यहूदी, तो हुयई इब्ने अख्तब बनी नज़ीर में बड़ा मुफसिद था, ये खैबर में जा रहा था, चंद मुफसिदों को लेकर मक्का पहुंचा और कुरैश को आपकी लड़ाई के वास्ते आमादा किया और तदबीर का और आदमियों से मदद देने का वादा किया, आदमियों से मैं मदद दूंगा और तदबीर भी करूंगा उसकी। मुख्तलिफ कबाइल मिलकर 10,000 हो गए, सब प्लानिंग की, ये किया वो किया, जमा किया सब लोगों को। ये इस कौम की शुरू से पॉलिसी और सियासत होती है कि अकेले नहीं लड़ना, अपने अकेले का नुकसान नहीं करना, और हतलिम का नुकसान का बोझ दूसरे पे डालना, साथ उनको देना, पैसा खर्चा करना, मरे तो उनके मरना, अपने नहीं मरना। 1400 साल हो गए तो भी वही सियासत है, 1400 साल पहले भी वही सियासत है। गर्ज यह कि उसने मुख्तलिफ कबाइल को मिलाकर 10,000 हो गए और मदीने को चले। आपने ये सुनकर बमशवरा हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के पास बजानिब कोह सला के खंदक खोदने का हुक्म दिया। मशवरा जब आपने लिया तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि हमारे पास जब एक किस्म का हादसा वाक़या होने को होता है तो हम लोग खंदक खोद देते हैं शहर के अतराफ। तो फिर आपने हज़रत सलमान फारसी के मशवरे के मुताबिक खंदक खोदने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब शहर पना और इमारत से मुहकम थी, पहाड़ी एरिया भी है दूसरा। पहले शुरू शुरू में इन मतलब 80s तक भी जो है ना खंदक के निशानात मौजूद थे, उसके बाद ख़त्म किए इन लोगों ने आसार जो खंदक के थे इलाके वादी से। वहाँ पे छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई थी जहाँ पे लोगों के खुब्बे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ठहरे थे, तो अबू बकर का खेमा जहाँ था, उमर का जहाँ था, वो सब थे छोटी छोटी मस्जिदें, वो सब ख़त्म कर दिए लोग। अजीब मामला है। तो पीछे के हिस्से में पहाड़ है पूरा जिधर से वो था, तो उधर से तो शहर को जो है ना मैं बचाने का इंतजाम था, उधर सामने से दुश्मन नहीं आने के लिए खंदक खोद दिया गया था। बाद मुरतब होने खंदक के वहाँ अपना लश्कर कायम किया और लड़ाई का अहतमाम किया। जब कुफार का लश्कर आ पहुँचा, खंदक देखकर बहुत मुतहयर हुआ, अरबों में रिवाज नहीं था खंदक का, वो बहुत परेशान हुए कि यार हमारे घोड़े जा ही नहीं सकते, ऐसा रास्ता बंद कर दिया है खोद के। एक नई तदबीर सामने आई उनके, बिल्कुल मुत्तसिल खंदक के खैमजन होकर तीरों संग से लड़ते रहे। खंदक के इधर घोड़े इधर आ नहीं सकते थे, खंदक के इधर जो है ना जो न तीरों का पत्थरों का इंतजाम किया हुआ था, बस तीर से मारते थे उधर, उनको उनको करीब आने नहीं देते थे, खंदक के भी करीब आने नहीं देते थे। इधर से भी तीरों संग से उनको जवाब दिया जाता था, उधर से भी तीरों संग आते थे। हुयई इब्ने अख्तब ने बनी कुरैज़ा को भी अपने साथ शरीक कर लिया। बनू नज़ीर बनू कुरैज़ा दो कबीले थे ना ये, जिनको जिला वतन किया गया था वहाँ से, इससे पहले जिसका जिक्र आया है गुज़िश्ता की मजलिस में, बनू कुरैज़ा को भी शरीक कर लिया। आपने अहज़ाब में तफरीका डालने के लिए मशवरा किया। अहज़ाब मुख्तलिफ लश्करों को कहते हैं, ग़ज़वा अहज़ाब इसीलिए, वो मुख्तलिफ लोग जो आए थे ना कबीले, तो ठहरे थे तो अपने हिसाब से, वो ये चाहते थे कि इनमें आपस में फूट पड़ जाए, जब खुद आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर भाग जाएंगे, रहेंगे थोड़े ही। तफरीका डालने के लिए मशवरा किया। एक शख्स नईब इब्ने मसूद ने कि कबीले गतफान से था और ताज़ा मुसलमान हुए थे, वो मुसलमान हो गए थे ना, ताज़ा मुसलमान हुए थे, नईब इब्ने मसूद मुसलमान हो गए बल्कि मालूम नहीं था, अर्ज किया कि मैं एक तदबीर खिलाफ डालने की कुरैश और बनू कुरैज़ा में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इस्लाम की उनको खबर नहीं, वो मेरा एतबार करेंगे। आपने हसब कायदा अल हर्ब खदा, जंग में तो धोखा होता ही है, इस कायदे इससे इजाज़त दे दी। वो बनू कुरैज़ा में गए और कहा कि तुमने जो कुरैश और गतफान से मुआफ़त और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैशिकनी की, बेजा किया। पहले बनू कुरैज़ा के पास गए और जाके ये बोले कि तुमने कुरैश के साथ और कबीले गतफान से मुआफ़त करके आ गए उनके हलीफ बन के, ये अच्छा कि नहीं किया आपने। अगर ये लोग बग़ैर मोहम्मद का काम तमाम किए हुए फिर गए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मार सके ये लोग और वापस चले गए, तो तुम लोग तो यहीं हो बनू कुरैज़ा, तो मोहम्मद तुम पर फौज कशी कर देंगे बाद में, तुम जो इनके साथ मुआफ़त करे बड़ी गड़बड़ करे, इसलिए कि अगर लड़ाई में अगर उनको मारे बगैर चले गए लोग, तो वो तो यहीं रहते हैं तुम भी यहीं रहते हो, लिहाजा वो तुम्हारा काम कर देंगे, ये मोहम्मद तुम पर खुदकशी वो फौज कशी कर देंगे, और तुमको तनहा उनके मुकाबले की ताकत नहीं। तो यहूद ने कहा कि अब क्या करना, फिर अब क्या तदबीर है? तो नईम ने कहा कि तुम इन लोगों को कहला भेजो कि चंद सरदार या औलाद सरदारों की तुमको बतौर रहन, यानी उवल के तौर पर दे दें, रहन के तौर पर तुम्हारी तुम अपने सरदारों को हमारे पास रखो, इस वास्ते कि अगर तुम लोग चले गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे बगैर, और जो है मोहम्मद हमारे ऊपर फौज कशी कर दिए, तो तुम लोग तो चले जाएंगे, मुकाबले में हमारा साथ नहीं देंगे, फिर हम अकेले हो जाएंगे, लिहाजा हम तुम्हारा साथ जब देंगे जब तुम हमारे आदमी तुम्हारे आदमी हमारे पास बतौर रहन रखो, और आम आदमी भी नहीं, सरदार रखना या उनकी औलाद को रखना हमारे पास। अगर मोहम्मद तुम्हारा इरादा करेंगे तो उन सरदारों की हिफाजत की ज़रूरत से ये लोग तुम्हारी मदद को आएंगे, अगर मुकाबले में वो लोग आएंगे तो फिर इनकी बचत के वास्ते वो लोग फिर आएंगे, और अगर वो लोग इसको मंजूर कर लें तो समझ लो कि दिल से उनको तुम्हारा ख्याल है, दिल में वो तो आखिर तुमको चाहते हैं, और अगर ना माने तो समझ लो कि दिल से तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। दोस्त उड़ते हैं, या तो देंगे वो अपने औलादों को तुम्हारे पास रहन के तौर पर या नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो मुखलिस होने की अलामत है, नहीं देंगे तो मुखलिस नहीं होने की अलामत है, तो तुम अभी से पीछे हट जाओ, ऐसा जो है ना शोशा छोड़े। फिर नईम जो है ना, नईम इब्न मसूद, नुआयम है या नईम है, गालिबन नुआयम है, ये तस्गीर के साथ है। फिर नुआयम जो है वहाँ से कुरैश के पास आए, बनू कुरैज़ा में ये बात डाल दी, उसके बाद कुरैश के पास आए और अपना खैरख्वाह होना जाहिर किया, क्योंकि अभी पता तो नहीं था कि ये मुसलमान हुए हैं, बल्कि खैरख्वाह होना जाहिर किया। उसके बाद कहा कि हमने सुना है कि कुरैज़ा मोहम्मद से दर पर्दा मिल गए हैं, बनू कुरैज़ा जो है ना वो मोहम्मद से मिल गए हैं, और मोहम्मद ने उनको कहला भेजा है कि हमारा दिल तब साफ होगा तुम्हारे से जब तुम कुरैश में से कुछ सरदारों को हमारे हाथ गिरफ्तार करा दो। तो इस वजह से उन्होंने वादा कर लिया है, तो अगर वो तुमसे आदमी तलब करें तो हरगिज न दीजो, समझे? अगर तुमसे आदमी तलब करें हरगिज न दीजो, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो मोहम्मद को पकड़ा देंगे। वहां से उठकर गतफान के लोगों से भी इस तरह कह दिया, चूंकि गतफान से और कुरैश से मिले थे वो लोग कुरैज़ा वाले, कुरैज़ा की तरफ से यहां वही पैगाम आया कि भाई तुम्हारे कुछ सरदार हमें दे दो, तो समझ गए कि ये इसका काम नहीं है, ये इसके पीछे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हाथ है और वो जो है ना ये कर रहे हैं हमारे साथ, और बनु कुरैज़ा जो है ना उधर ही मिल गए, अपने साथ नहीं है। उनको डाउट हो गया आदमी के मांगते ही, कुरैश ने इनकार कर दिया, नहीं हम तो नहीं देते हमारे आदमी, और उधर गतफान ने भी, और पूरे तौर से हर एक को दूसरे से बदगुमानी होकर अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया, आपस में सरफुटबल हो गई। जब अहजाब को ज्यादा दिन गुजर गए, उधर बनु कुरैज़ा के नामुआफ़िकत से उनके दिल अफसरदा हो गए, बनु कुरैज़ा नामुआफिक हो गए, उन्होंने आदमी नहीं दिए, भरोसा नहीं रहा एक दूसरे पे, तो अब जंग के वक्त ऐसा भरोसा नहीं रहा तो थोड़ी काम चल सकता है, अफसरदा हो गए। तो अब इस ये कैफियत चल रही थी कि अल्लाह ताला ने एक पुरवा हवा नहायत तुंद भेजी कि खेमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा कि आप ठहरना ठीक नहीं, और उसी रात लश्कर कुफार का चला गया। सूरह अहज़ाब में इसी गजबे का जिक्र है, सूरह अहज़ाब 21वां जिक्र है, और गजबे खंदक के मुत्तसिल ही गजबे बनु कुरैज़ा हुआ। फिर बनु कुरैज़ा जो है ना, ये जो उनके साथ हो गए थे रहने के वास्ते, उससे मुत्तसिल ही हुआ। वो इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह गजबे अहज़ाब की फतह के बाद दौलत खाने में तशरीफ़ लाए, आप नहा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि खुदा ताला का हुक्म है कि फौरन बनी कुरैज़ा पर चढ़ाई कीजिए, क्योंकि बनु कुरैज़ा मुशरिकीन के साथ मिल गए थे ना, मिलके उनको बुलाया था, साथ देते आओ बल्कि बुलाया था, यहाँ पे चढ़ाई कीजिए। आपने उसी वक्त लश्कर रवाना किया और माँ लश्कर बनी कुरैज़ा का मुहासिरा फरमाया। उन्होंने घबरा कर दरख्वास्त की कि हम इस तरह उतरते हैं कि साद इबन मआज जो हमारे लिए हुक्म दें हमको मंजूर है, साद इबन मआज को फैसल बनाओ हमारा। वो सहाबी कबीले औस में से थे जो बनु कुरैज़ा के हलीफ थे। बनु कुरैज़ा को ख्याल था कि हलीफ होने के सबब से रियायत करेंगे। उन्होंने बाद उतरने का यह हुक्म दिया कि पूरे मर्द कत्ल कर दिए जाएं। उनका फैसला मान लिया था। उसने फरमाया कि ठीक है, जो साद इब्न माज कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा। साद इब्न माज हुजूर के आशिक, उन्होंने कहा कि उतरने दो बेटों को, जब बताता हूँ क्या फैसला देना है। तो उन्होंने के बाद क्या कि जितने मर्द हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, और जितने अब बच्चे और औरतें हैं सबको बांदी बना लिया जाए, बांदी और गुलाम बना लिया जाए, और माल और जायदाद सब जब्त कर लिया जाए। चुनाचे चूंकि वो इस पर राजी हुए थे, तो जो उन्होंने फैसला दिया उसके मुताबिक अमल कर दिया गया, चुनाचे उसी तरह किया गया। और इसी ज़माने में अबू राफ़ा यहूदी कत्ल किया गया। ये बड़ा मालदार सौदागर था और खैबर के करीब एक गढ़ी में रहा करता था। कोठी को गढ़ी कहते हैं, जिसके चारों तरफ ब्रिज होता है। अहज़ाब को लड़ाई की तरगीब देने में, अहज़ाब की लड़ाई की मुख्तलिफ अहज़ाब को, अहज़ाब हिज्ब की जमा हिज्ब ने जमात लश्कर, अहज़ाब को लड़ाई की तरगीब देने में यह भी शरीक था। आपने अब्दुल्ला बिन उतैक को चंद अंसारियों पर सरदार मुकर्रर करके उसके कत्ल को भेजा। उन्होंने पहुंचकर रात को उसको कत्ल किया। हदीसों में इसका किस्सा मुफस्सल मजकूर है। और खंदक और कुरैज़ा के बाद, मगर पूरे तौर से तारीख मुतय्यन नहीं है, पहले गजवे उस्फान हुआ जिसमें हसब रिवायत तिरमिजी सलातुल खौफ नाजिल हुई। उसके बाद सरिया खब्त हुआ। खब्त कहते हैं झड़े हुए पत्तों को। सहाबा ने शिद्दत भूख से पत्ते झाड़ झाड़ कर खाए थे, इसलिए यह नाम हुआ। उसमें मदीने से 5 रोज़ की राह पर साहिल बहर के मुतसिल एक कबीले जोहनिया के मुकाबले के लिए अबू उबैदा को 300 मुहाजिरीन के साथ भेजा था। और अंबर मछली इसी सफर में दरिया से मौज के साथ किनारे पर आ गई थी, जो बहुत बड़ी थी। खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब खाना ख़त्म हो गया तो एक अमीर लश्कर जो है ना, एक दिन में एक खजूर देने लगे। पहले एक मुट्ठी खजूर दे रहे थे, फिर वो भी कम पड़ गए, तो फिर एक खजूर देते थे सिर्फ। साहबा से किसी ने पूछा खादिम से कि जब तुम्हारे पास जब एक खजूर से कैसे काम चलता है, एक दिन में एक खजूर, तो कहने के उससे काम कैसा चलता है, उस वक्त पता चला जब वो भी नहीं था मिलने खाने को, भूखे प्यासे अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मछली समंदर के किनारे पहुंचा दी थी, जो इतनी बड़ी ज़्यादा बड़ी थी कि 300 सहाबा किराम एक महीने से ज़्यादा तक उसमें से खाते रहे, और वो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुई थी। आप अंदाज़ा की उसकी आँख की चर्बी जो है ना, बाज़ाब्ता डोलों से निकाली गई, और जब आग की चर्बी उसके डोलों से खाली करके उसके हलके में बिठाया तो 13 सहाबा किराम आग के हलके में बैठे, एक आग के हलके में बैठे, इतनी बड़ी थी वो। अब ये खाना है नहीं खाना है मगर मजबूरी में तो खाते रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापसी के बाद बताया तो हुजूर ने फरमाया कि साथ है क्या और उसका गोश्त, कहेंगे हाँ है। फिर पता नहीं किस तरीके से उसको महफूज रखा होगा उन लोगों ने, तो बहरहाल यह कि फिर आपने भी उसमें से नोश फरमाया था। और इस गजबे का नाम गजबे सैफुल बहर भी है, और बाद रिवायत में है कि काफिले कुरैश के तारुज के लिए ये लश्कर गया था, और इस साल में और बकर बाद इससे पहले वाले साल में आयत हिजाब नाजिल हुई इस्लाम के हिफाजत करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। हजरत साहबा की जो ज़िंदगी है पाकिज़ा वो बहुत तफसील से जानना बहुत ज़रूरी होता है, तब अंदाज़ा होता है कि खुद इस्लाम पे चलना और इस्लाम के लिए मेहनत करना ये एक मुस्तकिल मशीन होता है, ये आराम तलबी की चीज़ें नहीं होती हैं। आराम तलबी से न दीन पे अमल हो सकता, न आराम तलबी से दीन फैला दीन की खिदमत है, तो कबूतर तीतर बतर का काम है, तो कबूतरों की ज़िंदगी है, ये कबूतर की लाइफ है, अपनी बीवी बच्चों को पालना, अपने घोंसले में रहना खामोश। इस्लाम में ये सब नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं फैल सकता। और ये तो ज़माने के अंदर तो ये है कि आपके साथ ऐसा कोई टकराव भी नहीं है, मुसलमानों में भी अगर करे तो ऐसे टकराव की नौबत नहीं आती, लेकिन इज्तमाही तौर पर अगर गैर मुस्लिमों में की जाएगी ये मेहनत तो टकराव की नौबत आएगी, तो भी करना ही है, तो भी मुसलमानों के ज़िम्मे है कि उसको करना ही करना है। इसलिए कहते हैं कि हजरत यानी इस्लाम को सही समझने, इस्लाम का मिजाज लेने के लिए सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, सहाबा के शब रोज़ को, सहाबा की ज़िंदगी को, उनके अवकात को, उनकी मसरूफियतों को, उनके अमाल को, क्योंकि ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहते रहे और कामयाब तरबियत हुई हुजूर की, और हुजूर ही के बताए हुए काम में लगे रहे आखिर तक। सन 6 हिजरी में बनु कुरैज़ा के 6 महीने के बाद, अभी बनु कुरैज़ा से 6 महीने ही हुए थे, सन 6 हिजरी में बनु कुरैज़ा के 6 महीने बाद आप बनु लहयान की तरफ गजबे के इरादे से चले, वो खबर सुनकर पहाड़ों में भाग गए। आपने वहाँ 2 रोज़ मुकीम रहकर फौज के दस्ते मुख्तलिफ जानिब भेजे। आप 14 दिन के बाद वापस मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए। फिर सरिया नजद वाक़ हुआ, यानी एक लश्कर नजद की तरफ आपने भेजा, वो बनी हनीफा के रईस सुमामा इबन असाल को पकड़ लाए और वो गिरफ्तार गुफ्तगू के बाद मुसलमान हो गए। इसी साल ज़िक़ादा में किस्सा हुदैबिया का वाक़िया हुआ जिसमें सुलह हुदैबिया पेश आई। अब तक तो आपने ख्वाब देखा कि आप मक्का तशरीफ़ ले गए और उमरा अदा किया। आपने सहाबा से यह ख्वाब बयान किया, सहाबा तो शौक और तमन्ना में बेकरार थे मक्के की, ख्वाब सुनकर तैयारी सफ़र की कर दी और आप भी मदीने तैयबा से रवाना हुए, यहाँ तक कि मुत्तसिल मक्का पहुँच गए करीब बिल्कुल, और कुरैश ने सुनकर कहा कि हम मक्के में हरगिज़ आने नहीं देंगे। आपने वहाँ से फिरकर हुदैबिया मकाम किया, हुदैबिया में वापस गया, शुमैसिया के पास ही है, जब अपन जिद्दे से जाते हैं मक्के को तो रास्ते में शुमैसिया मिलता है, बस बिल्कुल वहाँ से बाएं हाथ को ज़रा अंदर गए तो है। हुदैबिया एक कुआँ है, उसके पास मैदान है, वहाँ आप ठहरे। फिर एक दराज किस्से के बाद जो कि बुखारी शरीफ में मजकूर है, इस पर सुलह हुई कि अगले साल आकर उमरा करें और 3 दिन से ज़्यादा न ठहरें, और 10 बरस मुद्दत की सुलह ठहरी कि 10 बरस तक जंग नहीं होगी हमारी और आपकी, लड़ाई नहीं होगी, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम आपसे आप हमसे नहीं लड़ना। हुजूर तो इसके इंतज़ार में थे कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, तो हुजूर इसके इंतज़ार में थे किसी तरीके से सुलह हो जाए, और हर कीमत पर आपने सुलह की और दब कर सुलह की और हर शर्त को कबूल किया। ये अलामत है इस बात की कि पिछले 6 साल जो लड़ाई हुई वो हुजूर की मर्जी से नहीं हुई, मुसल्लत की गई आप पर ही लड़ाई, हालात ही ऐसे बनाए हुए थे, अब कोई लड़ने को आए तो ये भी तो मर्दानगी नहीं है ना कि आदमी खामोश बैठे, तो आप तो बहादुर थे तो जो लड़ने को आया था तो उससे तो लड़ा जाएगा, और वो जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो जब तक हुक्म था कि नहीं लड़ना है तो भी मर्दानगी ये थी कि नहीं लड़ रहे थे, मक्के में हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी, बदला लेने की इजाज़त नहीं थी, कितना भी जुल्म किया जाए खामोश रहो, तो वहाँ सब्र था। मदीना मुनव्वरा आए तो फिर जवाब देने का हुक्म दिया गया, तो फिर ये 6 साल जो है ना बहुत लड़ाइयाँ हुई, हर साल कई कई लड़ाइयाँ होती रहीं। फिर ये 6ठे साल ये मुआहदा हुआ कि सुलह करना है, सुलह का मुआहदा हो गया। तो ये सुलह का मुआहदा बड़ा अजीब गरीब हुआ है। इसमें बज़ाहिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दबे हैं, यानी हर शर्त को उनकी कबूल किया, सहाबा को ख़ुद तशवीश हुई है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बार बार हुजूर से कहा कि हम हक पे नहीं हैं क्या? तो हक पे नहीं, तो जब हक पे हैं तो इतना दब के सुलह करना कि क्या मतलब है? हम इतना दब के क्यों कर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं इतना इन काफिरों से, बेईमानों से? इनकी तो हम देख लेंगे, ये मतलब होता है ना। हज़रत उमर को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, सहाबा को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर हुजूर एक और चीज़ देख रहे थे। 10 बरस मुद्दत सुलह की ठहरी कि इसमें लड़ाई फीमा बहन लड़ाई ना हो। आपके हलीफों से कुरैश ने लड़े और कुरैश के हलीफों से आप ने लड़े। न सिर्फ ये कि हमारी और आपकी लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारे हलीफ से भी हम नहीं लड़ेंगे और हमारे हलीफ से तुम नहीं लड़ोगे। हलीफ कहते हैं जो मुआहदे में शरीक हो जाते हैं, हलीफ कहते हैं आहदे मुआफ़क़त बांधने वाले को। और वहाँ बनू बकर और बनी खुजा दो कबीले थे। खुजा जो हैं वो आपके हम आहद हुए, आपके हलीफ बने खुजा, और बनू बकर जो हैं वो कुरैश के हलीफ हुए। उसके बाद आप मदीना वापस तशरीफ़ ले आए। इसी साल हुदै सुनकर भाग गए और उनके 200 ऊँट हाथ आए जिनको लेकर मदीना आ गए। और अबू उबैदतुन इनके साथ में वो नहीं था, माहिदा नहीं था कोई। अबू उबैदतुन जर्रा को ज़िलक़िस्सा की तरफ भेजा, वो लोग भी भाग गए। एक शख्स हाथ आया, वो मुसलमान हो गया। मोहम्मद इबिन मसलमा को 10 आदमी लेकर भेजा। गनीम छुप कर बैठ गए। सिर्फ मोहम्मद इबिन मसलमा ज़ख्मी होकर लौटे। और इसी साल ज़ैद इबिन हारिसा का सरिया जमूम की तरफ रवाना हुआ। कुछ कैदी और मवेशी हाथ आए और जमात उलमा में यही ज़ैद इबिन हारिसा 15 आदमियों के साथ तरफ की तरफ रवाना हुए और 20 ऊँट हाथ आए। इसी महीने में यही ज़ैद इबिन ईस की जानिब भेजे गए यही ज़ैद ईस की जानिब भेजे गए स्वात से। और अबुल आस इबन रबी आपके दामाद यानी हज़रत ज़ैनब के शोहर कुरैश का माल तिजारत लिए हुए शाम से आ रहे थे, वो सब ले लिया गया। और अबुल आस ने मदीने में आकर हज़रत ज़ैनब की पनाह ली और दरख्वास्त की कि यह माल मुझको वापस करा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों से इजाज़त देकर वो माल वापस करा दिया, अपने दामाद का माल, वह भी मुसलमान नहीं हुए तो। उन्होंने मक्के में आकर सबकी अमानतें अदा की और मुसलमान हो गए। मानता कि वो ये ना रहे कि भाई मैं मुसलमान हुआ तो पैसों की वजह से मुसलमान हुआ बोल के नहीं दिखना बोल के। मगर ज़ादुल मआद में राजे इस किस्से के बाद हुदैबिया का होना बयान किया गया है और इसको अबू बसीर की तरफ मंसूब किया है। वह किस्सा अबू बसीर का फ़ज़ाइल अमाल में भी है। और उन्होंने ही आपके इरशाद की खबर सुनकर माल वापस किया था। और इसी में सरिय अब्दुलरहमान इब्न औफ का शाबान में दौमतुल जंदल की तरफ भेजा गया था, वो लोग मुसलमान हो गए। और इसी साल शव्वाल में औरनियीन के मुकाबले के लिए सरिय कुर्ज़ इब्न खालिद फहरी का हुआ। 20 आदमी भेजे थे, वो लोग पकड़े गए और कत्ल किए गए। बनु औरनियीन जो है ना, वो आए थे अपनी बीमारी की शिकायत करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सदक़े के जो ऊँट शहर बैतुलमाल में के जो ऊँट थे उनके जो है ना पेशाब पीने को कहा था कि तुम्हारी बीमारी का इलाज, बीमार थे सारे, पेट की बीमारी में मुबतला थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम वहाँ रहो जंगल में, और उनके उन्होंने पिया और ठीक हो गए थोड़े दिन। उसके बाद में जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चरवाहा था उसको कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद पूरे ऊँट जो है ना चुरा के लेके भाग गए। तो जाहिर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने पीछे लोगों को भेजा, वो सारे के सारे पकड़े गए, फिर आपने उनको मरवा दिया, सबको कत्ल करवा दिया था, जैसा कि हदीसों में है। इसके बाद इस सब के बाद में हुदैबिया हुआ। फिर बाद हुआ जिसका नाम गज़वे ज़ी क़ुरत भी है। यहाँ एक तालाब है, ये एक तालाब है, और गाबा एक मकाम है मदीने तैयबा के करीब। यहाँ आपके कुछ ऊँट चल रहे थे कि अब्दुलरहमान फजारी राई को कत्ल करके ऊँट हाँक ले गया। आप कुछ आदमी लेकर तशरीफ़ ले चले। सलमा इब्न अकवा ने उस रोज़ बहुत काम किया और उनको ज़ी क़ुरत तक भगाते चले गए और सब ऊँट छुड़ा लिए। सही मुस्लिम में भी यह किस्सा बसीत से मजकूर है, बहुत तफसील से, बसीत कहते हैं तफसील को, बस्त से मजकूर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से मदीना वापस आकर 20 रोज़ तकरीबन ठहरे थे कि गज़वा खैबर वाक़ हुआ। आप वहाँ सुबह को पहुँचे। वो लोग आलात ज़राअत लेकर सुबह को निकले थे कि आपको देखकर किले में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। आपने मुहासरा किया। 7 किले कैबर में थे, सब किले बतदरीज फतह हो गए। बाद फतह होने के आपने यहूद खैबर के जिलावतन होने का हुक्म दिया। वो खैबर का जो दरवाज़ा ने खोल रहा था, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जो खोला था वही इसी इसी इसमें है वो चीज़। आपने यहूद खैबर के जिला वतन होने का हुक्म दिया और उनकी अम्वाल और बाग और ज़मीन सब जब्त कर लिए। यहूद ने अर्ज किया कि आपको यहाँ के तरदुद के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप हमको जिला वतन न करें तो ये काम हम करेंगे। अरबी लफ्ज़ हुआ है तरदुद, माने आने जाने के लिए, सहूलतों के लिए। आप हमको जिला वतन न करें तो हम ये काम करेंगे। आपने ये बात उनकी कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब तक हम चाहें तुम्हें रखेंगे, जब चाहेंगे मना कर देंगे, और बटाई पर खिदमत के लिए उनको रखा। पैदावार में से निसफ हिस्सा उनका मुकर्रर किया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में, जबकि जज़ीरतुल अरब को कुफ़ार से खाली करना मंजूर हुआ, तो यहूद खैबर को भी निकाल दिया। वो सब शाम को चले गए। खैबर से मुलहक एक मौज़ा फदक था। वहाँ के लोगों ने आपसे इस तरह सुलह चाही कि आधी ज़मीन फदक की आपको दें और आधी अपने पास रखें। आपने कबूल फरमाया। मिन जुमला गनाई में खैबर के हज़रत सफ़िया और हज़रत दहिया के हिस्से में आई थी। दहिया कलबी इतने हसीन थे कि अगर वो जिस रास्ते से चले जाते थे, जिस गली में जाते थे, वहाँ के मर्द और औरतें सभी तकरीबन उनको देखने के लिए बाहर निकल जाते थे। पहले ज़माने में जब तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, फिर तो मर्द भी उनको देखने के लिए निकलते थे, भाई ये इतना खूबसूरत आदमी है, तो उनकी शक्ल में आते थे हज़रत जुबैर। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, तो और फिर सरदार की बेटी थी, बड़े बड़े घर की खातून थी, बहुत बड़ी थी, बहुत निस्बत भी बड़ी थी और वजाहत भी बड़ी थी। तो हज़रत दहिया के हिस्से में आई थी वो। आपने उनसे लेकर आज़ाद करके, फिर साहबा ने मशवरा दिया कि ये चूंकि हारून के उनसे ने उनके लोगों ने भी और इधर से भी ये हुआ कि चूंकि ये नबी की ख़ानदान के ताल्लुक़ रखने वाली हैं और शहजादी हैं, वहाँ के सरदार की बेटी हैं, तो बजाय हज़रत दहिया के अगर आप इनको कबूल फरमा लें तो वह ज़्यादा बेहतर है। तो फिर ये इस सिफारिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद किया। फिर उसके बाद फरमाया कि आप चाहो तो चली जाओ, हम आपके एहतराम में आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप चाहो तो चली जाओ, और अगर आप नहीं जाओगी, अगर आप पसंद करो तो मैं शादी कर सकता हूँ आपसे, ये कहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर हुज़ूर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे शादी करते हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी, फिर मुझे तो ये एज़ाज़ जो है, मुझे मानती थी वो कहा कि मैं आपको पहचानती थी और इस्लाम मुसलमान होने से पहले से ही जो है ना आपका जो मकाम है वो हमारे दिल में था बोले। तो फिर उसके बाद में कहा कि नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने निकाह फरमाया उनको आज़ाद करने के बाद, वरना ये आई थी खैबर की फतह के मौके पर बांदियों में। आप खैबर में तशरीफ़ रखते थे कि हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब माँ और मुहाजरीन हबशा के वहीं तशरीफ़ लाए और उन्हीं के साथ किश्ती पर हज़रत अबू मूसा अशअरी माँ अशअरीयीन के आए, और खैबर ही में एक यहूदिया ने दस्त के गोश्त में जहर मिलाकर आपको दिया। हाथ का गोश्त आपको पसंद था, एक यहूदिया ने खाना भेजा, उसमें जहर मिला दिया। आपने एक लुखमा मुंह में डाला और फरमाया कि इस दस्त ने मुझसे कह दिया कि मुझ में जहर मिला हुआ है। और इसी गजबे में गधे के गोश्त की हुरमत बयान फरमाई, पहले गधे का गोश्त खाया जाता था, उसकी हुरमत बयान फरमाई। और इसी गजबे में मुता की ममानात फरमाई, क़यामत तक के लिए मुता हराम है, बल्कि आपने फरमाया। फिर भी ये शिया नहीं मानते इस बात को, अभी तक चलाते हैं, बड़ा सवाब का काम है उनके पास जो जी की शुमार होती है औरत, हालांकि वो खालिस बदकारी है, जिनाकारी है। ज़रूरत की वजह से शादी करना आर्जी तौर पर, ये था पहले सिर्फ 3 दिन की इजाज़त मिली थी एक मौके पर, फिर आपने फरमाया क़यामत तक के लिए वो हराम है। और गज़वे औतास में फिर मुबाह हुआ था, फिर हराम हुआ, और आपने फरमाया कि मुता हराम है क़ियामत तक। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। फिर आप खैबर से फारिग होकर वादी उल कुरा की तरफ मुतवज्जे हुए, वहाँ कुछ यहूद और कुछ अरब थे, जंग के बाद वह भी फतह हुआ, और आप वादी उल कुरा में 4 रोज़ रहे। जब यहूद तैमा को ये खबरें पहुँची, उन्होंने आपसे सुलह कर ली और अपने अम्वाल पर काबिज रखे गए, सुलह हो गई तो उनको उनके माल रहने दिए गए उनके पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर और फदक वालों को निकाला था, और तैमा और वादी उल कुरा वालों को इसलिए नहीं निकाला कि ये मवाज़े शाम में से हैं। फिर खैबर से वापस तशरीफ़ लाकर शाम में से, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के उस फरमान की वजह से कि पूरे अरब से कुफार दो बाद के जो थे ताइमा और वादी उल्कुरा, तो इनको ये चूंकि शाम से मुलाकात थे, अरब में शामिल नहीं थे, वो दाखिल नहीं थे, जब मुल्क शाम अरब में नहीं था जब, इस वजह से वहां से उनको नहीं निकाला ये फरमा रहे। तैमा ही से तैमिया है, इब्ने तैमिया। फिर खैबर से वापस तशरीफ लाकर शव्वाल 7 हिजरी तक आप कहीं नहीं तशरीफ ले गए, और इस मुद्दत में मुख्तलिफ सराया रवाना फरमाए। सरिय अबू बकर बजानिब नजद, सरिय उमर बजानिब हवाजिन, सरिय अब्दुल्ला बिन रवाहा बजानिब बशीर इब्ने दाराम, सरिय बशीर इब्ने साद बजानिब बनी मुर्रा, सरिय बजानिब हरकात कबीले जुहनिया, सरिय गालिब इब्ने अब्दुल्ला कलबी बजानिब बनी मलूह, सरिय बशीर इब्ने साद बजानिब जमात उयना, सरिय अबी हदरद असलमी, और एक सरिया बजानिब अज़म। नंबर 10, सरिया अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी और खैबर फान से मुकाबला हुआ, और इसको गज़वे नज़द और गज़वे बनी अनमार भी कहते हैं, और इसी साल कहत पड़ा। आपके दुआ से पानी बरसा रमज़ान में। सन 6 हिजरी के हैं सारे, इतने वाक़यात हुए, अंदाज़ा फरमाइए कितनी मशगूलियत रही, खाने की फुर्सत, रहने की फुर्सत, आराम की फुर्सत, कहाँ थे, तकलीफ़ें ही थे। फिर कभी कोई मर रहा है, कभी कोई शहीद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ज़ख्मियों का तो हिसाब ही नहीं था। मशगूलियत, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सुलह हुदैबिया के बाद तो फिर वफूद का आना शुरू हो गया। 6 के बाद इस्लाम कबूल करने वालों का चूँकि दावत आम हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब दावत का काम ज़्यादा हुआ तो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए, उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं कहा तुम क्यों आए, तो बोले यहाँ तो मुस्लिम ही ज़्यादा है, 90% मुस्लिम है, मुसलमानों में मेहनत करने को आए। तो बोले नहीं, ये आपका काम नहीं होता, ये हुकूमत का काम है, अगर करना है तो वो खुद करेगी, तुम जाओ। मुसलमान मुल्कों में मुसलमान का काम का, इसलिए फिर तो ईसाई बढ़ेंगे दिन ब दिन और गैर मुस्लिम बढ़ेंगे, दहरियत फैलेगी, इर्तदाद फैलेगा। तो इसलिए जो है सहाबा के वाकयात बताते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सीरत बताती है कि इस्लाम की इस्लामी ज़िंदगी, इस्लाम की मेहनत, इस्लाम को ज़िंदा करने की मेहनत के साथ, ज़िंदा करने की क्या क्या तदबीरें होती हैं गौर करना उस पर। मदरसे हैं, इदारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं इस्लामी मालूमात फैलाने के वास्ते, दावत है अपनों में, परायों में, मुसलमानों में भी, गैर मुस्लिमों में भी। पब्लिक का काम मुसलमानों में भी है, पब्लिक का काम गैर गैरों में भी है। किस तरीके से इसको अपनाया जाएगा वो देख के उसका उसके प्रोग्राम में हिस्सा लेना सही तरीके पर, उलमाए किराम की हिदायत की रोशनी में, या उलमाए किराम की सरपरस्ती में, या बराह रास्त उनकी सरलीम और उनकी हिदायत के मुताबिक उसकी रोशनी में रहना। खुद से भी नहीं होते ये सब काम। बुजुर्ग गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह, नदवतुल्लमा के नाजिम थे वो, जब अमेरिका आए थे तो उन्होंने ये बात फरमाई थी कि इस्लाम को ज़िंदा करने की मेहनत के बगैर अमेरिका में रहना हराम है। अमेरिका में इस्लाम को ज़िंदा करने की मेहनत के साथ रहे, उस नीयत से रहे। तो ये देखना जरूर, इस्लाम को ज़िंदा करने की मेहनत में हिस्सा ले रहे नहीं ले रहे, किसी न किसी दर्जे की। तो ज़िंदा करने की मेहनत अलग होती है, इस्लाम पर अमल करने की मेहनत अलग होती है। इस्लाम पर अमल करना उसको ज़िंदा करने का मीनिंग में नहीं आता, अपने अंदर ज़िंदा करने की मीनिंग में आता हो, लेकिन इस्लाम को फैलाना, इशाअत करना, हिफाजत करना उसकी उस माना में नहीं आता। असर दूसरों पे जाए तो फिर वो फैलने में आता है। और हजरत साहबा ने तो इसमें उनके लिए तो ऑप्शन ही रहते थे उसमें, उनके उनके मजहब को छेड़ना, उनके अकीदे को छेड़ना जानी दुश्मनी के बराबर होता था, इसलिए फौरन लड़ाई हो जाती थी। और मुसलमान थे भी नहीं कि मुसलमानों में मेहनत, और वो बनी इसराइल का हाल तो था नहीं वहाँ पे। बनी इसराइल तो ये है कि उसमें जो आते थे पैगंबर भी आते थे तो मुसलमानों में तबलीग करते थे वो, चूँकि बनी इसराइल साले मुसलमान थे मगर बदअमल होते थे, तो पैगंबर उसी में तबलीग करते थे। सब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पर अमल करने की तरगीब देने के लिए आए ना भाई, तौरात के बाद में जितने पैगंबर आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, बीच में यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली जबूर, वो तो ज़्यादातर नाते और हमदे थे, वो उसके अंदर आकर हमद पढ़ते थे, जबूर की जो तिलावत होती थी वैसी होती थी वो। जिसमें पहाड़ उनके साथ हो जाते थे, परिंदे उनके साथ जमा हो जाते थे। तो इसलिए उनका निज़ाम अलग था, यहाँ ये निज़ाम अलग था। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है ना दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की गई, लड़ाई शुरू हो गई। ये हुई बात, तो इसलिए जो है ना लड़ाई बात बात करें कि लड़ाई की नौबत आ जाती थी, मगर तबलीग से रुक नहीं सकते थे और लड़ाई में जान की भी परवाह करने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए लड़ना भी पड़ता था, शहीद भी हुए इसीलिए। मगर अल्लाह ताला की करनी यह है कि इतना सब होने के बावजूद तादाद जो है ना वो 1100-1200 ही मिलती है, 11-12 के बीच में। अंदाज़ा कीजिए आप क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था ये भी, क्योंकि ज़्यादा अमवात जो हुई हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हुई हैं। फिर बड़ी बड़ी तादाद में लोग अपने भी यानी शहीद हुए हैं और दुश्मन के भी बहुत बड़ी बड़ी तादाद में मरे हैं। खालिद इब्न वलीद से दुश्मन इसीलिए बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कि खालिद इब्न वलीद की जिनसे लड़ाइयाँ हुई तो अपने वो 60 साथियों के साथ एक एक दिन में 5-5 हज़ार तो सर खुद उड़ाए हैं, 5 हज़ार मैदान जंग में सर गिने गए दुश्मन के। तो जाहिर है कि दुश्मन को याद रहता है, भूलता थोड़ी दुश्मन। तो ये बात के किस्से हुए हैं, अभी फिर लाखों में हुई ना वो। अब हजरत खालिद बिन वलीद का साबिका जिस लश्कर के साथ हो गया वो 3 लाख का था और 60-60 हज़ार जो है ना आते थे लड़ने के लिए, 60-60 हज़ार हर दिन ताज़ा ताज़ा दम होके नया, तो भाग जाते थे। फिर दूसरे 60 हज़ार आते थे, चूंकि उसमें जख्मी बेहिसाब होते थे, तो ऐसा 2-2 लाख 3-3 लाख का लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आता था। और ये जो है ना 30 हज़ार हो गए तो बहुत हो गए, आखिर तक जो इनकी तादाद थी वो 30 हज़ार तक गई थी हजरत खालिद बिन वलीद की, बहुत जमा हो गए थे। अब वही वेदा के इनके उनके साहबा के कहने पे 2-3 लाख के मुकाबले में 30 हज़ार जमा हो गए थे एक वक्त। वो हमने जिस दिन आज लड़ने के लिए कौन कौन जाएगा तो उसमें 50-60 को लेके जाते थे बस, फिर आखिर में शायद ज़्यादा भी ले गए होंगे। जाहिर है कि जब 30 हज़ार होंगे तो 50 हज़ार कैसे जाएँ, 50 कैसे जाएंगे, लेकिन शुरू में इनका 60 जाना 30 जाना साबित है रिवा किताबों में। खैर वो नौबत तो इस वक्त नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से ही गया, हम कमज़ोरों का इलाज है। मगर हमको ये है कि भाई दीन की ज़िंदगी के लिए, दीन की हयात के लिए, इशाअत के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा मुसलमानों को, ख़ास तौर पर इस मुल्क में और हर मुल्क में, हर जगह हर मुल्क में जहाँ पर मुसलमान होता है। आदमी जब पैदा होता है तो जाहिल होता है, तो मुसलमानों को भी बच्चे पैदा होते ही रहते हैं, तो हज़ारों लाखों बच्चे मुसलमानों में होते हैं हर रोज़। तो रोज़ाना जब लाखों होंगे पूरी दुनिया के मुसलमानों में, तो लाखों हो जाएंगे ना भाई, तो रोज़ाना जब लाखों होंगे तो बड़े भी उसी तनासुब से होंगे, तो बालिग भी फिर वो उसी तनासुब से होंगे, तो हर रोज़ मान बच्चे बच्चियाँ बालिग होते हैं मुसलमानों के। और वो कोई पैदा पढ़े लिखे होके तो पैदा हुए नहीं वो, तो उनकी तालीम तरबियत उनकी अगर नहीं होगी तो वो इस्लाम से बेगाना रहेंगे, जब इस्लाम से बेगाना होंगे तो इस्लाम से खारिज भी होंगे बहुत से, तो फिर वो ज़रिया बनता है बेदीनी के फैलने का। तो गैरों में तो खैर के इस्लाम क्या आएगा, फिर अपनों से ही आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को भाई से तो मजमूई काम करना होता है, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के दीन को बचाने के लिए संजीदगी से मेहनत करना पड़ता है। गैर संजीदगी से मेहनत का मतलब यह होता है कि जहन में है कि भाई कुछ इनकी दीनी तालीम का भी इंतज़ाम हो जाए, कोई ट्यूटर रख दिया, कोई घंटे 1.5 घंटे के लिए मालूमात फराहम कर दी दीन की और समझ गए कि काम हो गया शायद। ये भी तो देखना होता है कि काफ़ी हो रहा है नहीं हो रहा, उनके अखलाक पड़ रहा, जब उनकी तालीम आगे जा रही है तो वो क्या कर रहे हैं। हमारी एक मुसीबत ये भी है कि हम निगरानी भी करते हैं, जैसे वो बच्चा जो है हाई स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, तो फिर हमारे से दूर हो जाता है वो, हमें यानी हमारी ना उसके हमें ना उसकी नमाज की फ़िक्र, ना उसके रोज़े की फ़िक्र, ना उसके लिबास की फ़िक्र, ना उसके दोस्तों की फ़िक्र, ना उसके माहौल की फ़िक्र, कुछ नहीं। वो है समझदार है, वो खुद ही कर लेगा, कहाँ से कर लेगा वो फिर वो बुराइयों में पड़ जाता है। इस तरीके से दीन रुखसत हो जाता है। गलत माहौल में छोड़ना माँ बाप का अपने औलाद को गैर मुस्लिम बनाने के लिए राज़ी होने की अलामत है कि आप गैर मुस्लिम होने पर उनके राज़ी हो चुके हैं। نعوذ باللہ من ذالک، اللہم احفظنا. اس کے باوجود دین کے بارے میں خواہش رکھنے اپنی اولاد کی کہ وہ دین پر بھی چلتے رہیں، تو یہ غیر سنجیدہ کوشش ہے. سنجیدہ میں تو آپ کو صحیح انالائز کر کے اس پر جتنا وقت دینا ہے، جتنی محنت لگنی ہے، جیسے لگنی ہے ویسے کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے ہم بہت مخمصے میں، بہت عجیب سچویشن میں ہیں، اور اصل عذاب وہ ہے. مذہب کے اعتبار سے جو دوری کا عذاب ہوتا ہے، یہ کرونا عذاب کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. وہ وبا زیادہ شدید ہے، ماحول کی وبا، بری عادتوں کی وبا، بری صحبتوں کی وبا، یہ بہت زیادہ ہے اس کرونا کی وبا کے مقابلے میں جو اس وقت پوری دنیا میں ہے. یہ فزیکلی بیماری ہے جو پھیلنے والی ہے، وہ روحانی بیماری ہے جو پھیلنے والی ہے. یہ بھی پھیلتی ہے، وہ بھی پھیلتی ہے. اس کے جاننے والے اس کے لاک ڈاؤن کے جتنے قائل ہیں، اس کے جاننے والے اس کے لاک ڈاؤن کے اتنے قائل ہیں. اس میں جتنا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اس میں بھی اتنا ہی کیئرفل، اس سے زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. یہ وائرس چونکہ تھوک سے پہنچتا ہے، تو اس لیے منہ پہ لگانا پڑتا ہے. وہ وائرس آنکھوں سے پہنچتا ہے، زیادہ آنکھوں سے کانوں سے پہنچتا ہے. وہ پٹی اوپر لگانے کی ہے. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ہے، اور کسی خاص جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ کسی خاص رنگ میں نہیں ہے، بلکہ باعث مجموعی ہے. اب مسلمانوں کی خرابی کو دور کرنے کے لیے، اس سے ہوتی اصل خرابی دور. تو وہ علاقے کا کوئی خاص ملک میں آنے والا نہیں چاہیے. یملا ال کیا ہے وہ، عدلن، کہ عدل سے بھر دیں گے پوری دنیا کو، انصاف سے بھر دیں گے پوری دنیا کو. تو ویسا مجدد تو جو ہے عالمی مجدد ہوگا، پورے عالم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجدد وہ امام مہدی ہوں گے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو مجدد چاہیے ایک ساتھ، پوری دنیاوی لیول کا. اور ویسا مجدد کوئی علاقہ ہی نہیں ہو سکتا. اب عربوں عجمیوں میں کوئی آ گیا تو وہ عربوں کو کام نہیں آتا، عربوں میں کوئی آ گیا تو وہ عجمیوں کو کام نہیں آتا. ایک ملک میں آنے والا دوسرے ملک میں کام نہیں آتا، آتا ہے لیکن مطلب جیسے اس کے اثرات پھیلتے ہیں لوکلی سطح پر، ایسے عالمی سطح پر نہیں پھیلتے. واللہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، لیکن بظاہر حالات ایسے ہیں جس اعتبار سے خرابی ہے اسلام کی. مگر ہم اپنے طور پر مقامی سطح پر اپنی ذات کے حد تک، اپنی اولاد کے حد تک، اور اپنے اطراف میں جو اپنے دوست احباب کا سرکل ہے اس میں، جہاں تک اپنی آواز سنی جاتی ہے، بات لی جاتی ہے، اس میں مستقل محنت اپنی اپنانی پڑے گی، اور خود بھی محنت کرتے رہنا پڑے گا. اور کام میں لگے رہنے سے خود اپنی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اپنی غلطیاں بھی دور ہوتی رہتی ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. صل وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.